बीबीसी इंडिया बोल तारीख 24 सितंबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पहले पठानकोट और अब उड़ी में हमला। भारत पाकिस्तान के बीच कड़वाहट और बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर गरजे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के आवाम से बात करना चाहते हैं। आखिरकार मोदी की पाकिस्तान नीति है क्या? आज इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया में एक ही देश है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चारों तरफ चरमपंथियों को निर्यात करता है। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ हजार साल लड़ने को तैयार है, लेकिन ये लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी, शिशु मृत्यु और अशिक्षा के खिलाफ होगी।
पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान हजार साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने जवानों के बलिदान को भूला नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश में भारत कामयाब हो रहा है और वो उसे बिल्कुल अकेला कर देगा। रूस के समर्थन वाली सीरिया की सरकारी सेना अलेप्पो शहर में एक बड़े अभियान में जुटी है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने विद्रोहियों के एक गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इस बीच विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में भारी हवाई हमले हो रहे हैं। राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों का कहना है कि अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है। विद्रोहियों का कहना है कि ज़्यादातर हवाई हमले रूसी लड़ाकू विमानों ने किए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि सीरिया में युद्ध विराम सिर्फ उनके देश पर आधारित नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सभी पक्षों को सामूहिक कोशिश करनी होगी। अमेरिका में वॉशिंगटन पुलिस ने कहा है कि बर्लिंगटन शहर की एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले कहा गया था कि 4 महिलाओं को गोली मार दी गई थी, लेकिन अब पुलिस ने कहा है कि गोली लगने से घायल एक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध की तलाश की जा रही है। एक संदिग्ध शख्स के पास एक राइफल दिखी है और वो घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने सीसीटीवी से ली गई उसकी एक तस्वीर जारी की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी ने वामपंथी जेरेमी कॉर्बिन को एक बार फिर अपना नेता चुन लिया है। कॉर्बिन के चुनाव में पार्टी साफ तौर पर दो धड़ों में बंट गई है। कॉर्बिन ने इन चुनावों में अपने वोट का आंकड़ा बढ़ाकर 62% तक पहुंचा दिया है। उनके अकेले प्रतिद्वंदी ओविन स्मिथ उनसे काफ़ी पीछे हैं। मध्य यूरोप और बाल्कन देशों के नेता शरणार्थी संकट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के देशों में इस संकट को लेकर तनाव भर गया है। वियना में हो रही इस बैठक में जर्मनी और हंगरी भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में इस मुद्दे पर काफी असहमति है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं कि आखिरकार मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति क्या है। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ सामने स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, सबसे पहली चीज़, पहली प्रतिक्रिया यही जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच वो गए और उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया, कुछ बातें उन्होंने कही, वो हम पहले सुन लेते हैं।
दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादिन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं।
नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने यूएन में भाषण दिया। भारत भूषण जी, पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, किससे बात करना चाहते हैं? आवाम से कहेंगे क्या, पाकिस्तान की आवाम से?
उन्हें भारत के आवाम से बात करनी चाहिए। वो बात कर रहे थे अपने काडर से, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। लेकिन बात सही कह रहे थे कि पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको, जो पूरी दुनिया में टेररिज्म निर्यात करता है। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन उनको इसके बाद भारत के लोगों से भी बात करनी पड़ेगी कि कब तक ये वायलेंस चलेगा और इसके बारे में वो क्या करेंगे। ये कहना कि हम लड़ाई करेंगे 1000 साल तक लेकिन गरीबी और गुर्बत के खिलाफ, इससे तो न तो भारतीय सैनिक मरने बंद होंगे, न टेररिज्म बंद होगा और नहीं कश्मीर की समस्या हल होगी।
अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया कि अशिक्षा, गरीबी, इससे लड़ेंगे।
जी, तो इसका मतलब कि मिलिट्री ऑप्शन के बारे में बात नहीं की, और ये अच्छी बात है कि कोई लड़ाई ना हो भारत और पाक के बीच में, क्योंकि जो भी ऐसी लड़ाई होगी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिणाम हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज़ नहीं मानता है न्यूक्लियर वेपन्स का। वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिनको कहते हैं, जो कि युद्ध के क्षेत्र में छोटे वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकता है भारत के खिलाफ। और फिर भारत क्या करेगा, ये सोचने की बात है। तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किन राजनयिक तरीकों से, किन डिप्लोमेटिक तरीकों से वो पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी अगर वो कुछ बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा।
कूटनीतिक स्तर पर भारत क्या कर रहा है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। कार्यक्रम में दो श्रोताओं को शामिल कर रहा हूं। जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो।
जी हाँ, नाम बताएं।
हाँ सर, मैं दिलावर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ, जैसलमेर राजस्थान से।
दिलावर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी सर, मोदी जी की कुछ नीति में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी, घर के चिराग से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो इजराइल में है, जो जापान में है, देश के प्रति, देश में प्यार की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना, हुबल वतन की भावना ऐसी पैदा करना चाहिए, कोई देश के अंदर गद्दार नहीं हो और कोई दुश्मन देश के अंदर अटैक नहीं कर सके।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए?
नहीं सर, आक्रमण कर देना चाहिए वो बात अलग है, आक्रमण के अलावा भी कुछ और भी रस्ते हैं, कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और भी रस्ते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए सर।
जवाब देना चाहिए, राजनयिक स्तर पर जवाब देना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर जवाब देना चाहिए। दिलावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं? हेलो।
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
मैं विश्वनाथ विश्वास, फार्मेसी बिहार से।
हाँ जी विश्वनाथ जी, जी
जी, मैं पाकिस्तान और इंडिया के संबंध में कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को आप तो दोनों देशों के पास जैसे ब्रह्मास्त्र है, तो इस ब्रह्मास्त्र का मतलब मेरा परमाणु बम से है। तो ये लड़ाई अगर छेड़ता है भारत तो ये तो मान लीजिए खतरनाक होगा। तो सबसे अच्छा उपाय है पाकिस्तान को घेरने का कि हमारी जो 5 नदियां जाती है पाकिस्तान को, अगर वो तो मोड़ लिया है भारत की ओर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है,
तो मतलब पानी रोक देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि, यानी कि ये सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी, आपकी टेलीफोन की जो गुणवत्ता थी वो ख़राब थी। दो चीज़ें आईं, दिलावर हुसैन ने कहा कि कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत तमाम तरीके से कूटनीतिक प्रयास कर रहा है अलग अलग मंचों पर, भारत की तरफ से भी कोशिश हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ की कोशिश ये थी कि संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया और अपनी जो गोटियाँ थीं वो उन्होंने खेली।
देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करना मुश्किल है, इसलिए भी मुश्किल है कि आप देखें अमेरिका, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा है? जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है उसमें उरी का जिक्र अवश्य है, लेकिन उसका है कि जो पूरा वायलेंस ढाई महीने से चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में उरी का मेंशन किया गया और उस टेररिज्म को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं कहा गया है, पाकिस्तान को उस टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने की, तो कभी पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेगा। दूसरा, चीन कभी पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेगा क्योंकि उनका वो ऑल वेदर फ्रेंड है। तो यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के दो परमानेंट मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करना चाहेंगे और न करेंगे, तो पाकिस्तान अलग थलग नहीं होगा। रही बाकी मुल्कों की बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने OIC ने कहा है कि वो तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेगा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हुए हैं
उसकी जांच करेगा,
उसकी जांच करेगा। टर्की उसका हेड है, टर्की आपके खिलाफ है। हम ये कह सकते हैं हाँ जी बहरीन ने हमारे सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दी है, सऊदी अरेबिया ने दे दी है और बांग्लादेश ने दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीकों से अलग थलग करना उतना आसान नहीं है क्योंकि जियो पोलिटिकल रियलिटी इस रीजन की ऐसी हैं कि आप उनको अलग थलग नहीं कर पाएंगे।
मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि जो भारत की विदेश नीति रही है, और निश्चित तौर पर इसको हम मोदी सरकार की विदेश नीति कह सकते हैं या फिर हम इसकी तुलना कर सकते हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उनकी विदेश नीति में और वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीति में कोई आप फर्क देख पाते हैं?
जी, अंतर तो है, भारत के इंटरेस्ट तो वही रहे हैं लेकिन तब से समय भी बदल गया है। आज भारत की जो अमेरिका के साथ दोस्ती है वो पहले उस हद तक वैसी नहीं थी जैसी
शुरुआत हुई थी मनमोहन सिंह जी समय में
शुरुआत हुई थी। आज आप देखिए कि रूस जिसके साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता थी वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट
युद्धाभ्यास
कर रहा है। ये बात पहले कभी हो नहीं सकती थी। तो हमने अपनी जो डोर है वो अमेरिका के साथ बांध दी है, और इसलिए बांध दिए क्योंकि अमेरिका को हमारी आवश्यकता है चीन को कंट्रोल करने के लिए, उसको उसकी एक्टिविटीज़ को लिमिट करने के लिए। तो इस हद तक हमारी विदेश नीति में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन जो देशों के इंटरेस्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं और हर एक विदेश नीति जो है पिछली विदेश नीति की कंटिन्यूएशन है, उसके सक्सेसेस में भी और फेलियर्स में भी।
तो क्या हम इसको इस तरह से माने कि जो मनमोहन सिंह सरकार से पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी उसका कंटिन्यूएशन मनमोहन सिंह सरकार ने किया और उसका कंटिन्यूएशन मोदी सरकार कर रही है?
जी, भारत के इंटरेस्ट नहीं बदले मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उन सरकारों ने कैसे रिएक्ट किया पाकिस्तान के टेररिज्म से वो अलग अलग तरीके से किया। जब वाजपेयी जी थे तब कारगिल हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आपने पूरे साल भर के लिए भारतीय फौज को सीमा पे खड़ा कर दिया, उसका खर्चा भारत को अवश्य खामियाजा भुगतना पड़ा कि पैसे खर्च हुए लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ उससे। तो वो एक रिएक्शन था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में बम्बई अटैक हुआ, उसके बाद भी हमने तरह तरह की बातें की कि सारे ऑप्शंस को लें,
कभी गर्म कभी नरम होते हैं। हिंदुस्तान जो है अगर लगातार देखा जाए तो हिंदुस्तान का रवैया कभी गर्म हो जाता है और कभी नरम हो जाता है।
मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हम लोग जो है ना अपनी ही छवि के कैदी बन गए हैं। हमारी छवि यह है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम तैश में आके कोई काम नहीं करते, हम सोच समझ के काम करते हैं, हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, और ये इमेज हमारे ऊपर, ये छवि इतनी हावी हो गई है कि हम बिल्कुल किंग करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, खाली ये कहते रहते हैं 1000 साल तक लड़ेंगे, सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे करने का समय आता है वो विंडो तब तक ख़त्म हो जाती है।
जी, कार्यक्रम में श्रोता को शामिल करेंगे। जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
सर, मैं राघव कुमार जी से बोल रहा हूँ।
राघव जी, अच्छा राघव जी बिहार मधुबनी से बोल रहे हैं। जी
जी मोहनलाल जी, सर आपको सबसे पहले नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार
सर, विदेश नीति में फर्क तो आया है जी, और इसके लिए आप मोदी जी को श्रेय दे सकते हैं। एक आक्रामक विदेश नीति उन्होंने अपनाया है,
आक्रामक विदेश नीति। हाँ
जी, जिसके फलस्वरूप अभी यूरोपीय संघ जो है उन्होंने भी कहा है कि बलूचिस्तान में आप जो है मानवाधिकार का उल्लंघन बंद करो, नहीं तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। या चाहे अमेरिका जो आज कुछ कह रहा है, इससे पहले तो नहीं कह रहा था। जहां तक रूस के सैन्य अभ्यास की बात है सर, इसका तो BBC से हमने सुना था कि इसका खंडन भी रूस ने किया कि हम तो कोई भी सैन्य अभ्यास नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नमस्कार भारत में आपके बीबीसी में ही आया था
जी, लेकिन फिलहाल तो खबरें ये है कि जो सैनिक युद्धाभ्यास है वो हो रहा है।
जी हो रहा है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है सर, ये तो सैन्य अभ्यास है, ये तो पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश है।
हाँ,
अगर मान लिया जाए ऐसे तो है सैन्य तांत्रिक देश, लेकिन हक तो उसको भी है किसी के साथ सैन्य अभ्यास करे या कुछ भी करे। हम मुद्दे की बात पे आते हैं सर
जी,
पाकिस्तान का जनता जो है सर, अगर वो बीबीसी का प्रोग्राम सुन रहे होंगे, मेरा एक अपील है उनसे
जी
कि पाकिस्तान की जनता ये बात को सोचे कि आतंकवाद से, हिंसा से किसी को क्या मिलता है। शांति से सब कुछ मिल सकता है। अगर जनता ये बात सोच ले कि हम हिंसा नहीं करने देंगे, आतंकवादी को सह नहीं देंगे, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है।
यानी कि शांति से बहुत कुछ मिल सकता है। राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी ने दो मुद्दे की बात की, कहा कि भारत की नीति में बदलाव आया है, खासकर मोदी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में जो बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना शुरू किया और बड़े जोर शोर से उठाना शुरू किया, इसको ये कहा गया कि ये जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर के सवाल उठा रहा है उसका जवाब बलूचिस्तान का मुद्दा है।
लेकिन यही बात तो शर्मल शेख में मनमोहन सिंह ने जब कही थी तब यही मोदी जी और यही बीजेपी उनके बहुत खिलाफ हो गई थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि बलूचिस्तान का जो इन्होंने मुद्दा उठाया है अच्छा किया है, उठाया है, लेकिन केवल ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया है। ये नहीं कहा है कि हम बलूचिस्तान में जाके आतंकवाद फैलाएंगे या बम फोड़ेंगे, और ऐसा भारत न करता है न करना चाहिए भारत को। लेकिन ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है ताकि लोगों को लगे कि पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है जब वो कश्मीर की बात करता है। और इससे पहले आपके एक श्रोता जो थे विश्वनाथ जी, उन्होंने कहा था कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी में हम पानी नहीं रोक सकते। किसी ने आज तक नदी का पानी रोका है? और आप रोकते हैं तो बांध बना के रोकते हैं, बांध बनने में कितना समय लगता है? 20 साल लग जाते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी 56 साल से काम कर रही है, उसमें चाहे 4 लड़ाइयाँ हो गई, कितने आतंकवादी अटैक हो गए, उस को भारत ने छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की। लेकिन पहली बार कहा जा रहा है कि ये तो तभी चल सकती है जब दोस्ती हो, ये तो दुश्मनी थी तब भी चली ये ट्रीटी। इस ट्रीटी को इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर भारत प्रोटेस्ट करना चाहता है तो इंडस वाटर कमीशन में एक कमिश्नर पाकिस्तान का होता है, एक इंडिया का होता है। जो इंडिया का कमिश्नर है उसको आप फिलहाल विड्रॉ कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं, ताकि जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है आर्टिकल 9 का इंडस वाटर ट्रीटी का, कि साहब भारत बांध बना रहा है या
पानी नहीं दे रहा है,
वो शिकायत आप किसी के पास कर ही नहीं पाएंगे, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन ट्रीटी को ख़त्म कर देना चाहिए, ये गलत बात है।
अभी 3 दिन पहले जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप से एक संवाददाता ने ये सवाल पूछा था, तो उनका भी यही कहना था कि समझौता कोई साफ उत्तर नहीं था, गोल जवाब था कि ये तो भाई दोनों देशों के आपसी सौहार्द पर ही निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। एक फेसबुक की टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा, यूनुस खान हैं जिन्होंने फेसबुक पर टिप्पणी की है कि मोदी जी के पास देश या विदेश की कोई नीति नहीं है, उन्हें सिर्फ भाषण करने का शौक है, अंजाम कुछ भी हो।
नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। ये बात अवश्य है कि इलेक्शन में मोदी जी बहुत सारी बातें कह जाते हैं और शायद बाद में पछताते भी होंगे कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कहना कि वो केवल भाषण करते हैं, ये गलत है। अगर कोई कहे कि भाषण देने के बजाय पाकिस्तान को अटैक कर देना चाहिए या लड़ाई कर देनी चाहिए, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को बहुत संजीदा तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से सब चीज़ों को देख के एक्ट करना चाहिए। भाषण देने की भी आवश्यकता होती
आज
है।
आज जो तेवर थे नरेंद्र मोदी जी के, उसको सुनकर कैसा लगा आपको कि अपने आक्रामक रवैये में, रुख में वो वापस आ गए हैं? क्योंकि बीच में चाहे वो नवाज शरीफ के यहाँ पर अचानक पहुँच जाना हो शादी के दौरान।
जी बहुत, मैं कहूँगा कि अच्छा भाषण था, लेकिन केवल भाषण से कुछ नहीं होता है। ये भाषण आवश्यक इसलिए था क्योंकि उनके पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिन लोगों को आपने अब तक बहका रखा था कि एक सिर काटेंगे और 10 सिर हम ले आएंगे, और अगर हम होंगे तो पाकिस्तान की कुछ हिम्मत ही नहीं होगी, उनके लिए तो आक्रामक भाषण आपको देना आवश्यक है। लेकिन आक्रामक भाषण को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं बनना चाहिए।
अयूब हैं, अयूब वाघेला, ये फेसबुक पर एक कमेंट लिख रहे हैं कि ऐसे करते करते दिन बीत जाएंगे, पठानकोट की तरह ये उड़ी भी भूल जाएंगे। अगर मोदी जी इस समय विपक्ष में होते तो पाकिस्तान की जबान खींच लेते।
पाकिस्तान की जबान तो नहीं खींचते, लेकिन उसकी धमकी अवश्य देते। लेकिन मोदी जी आज विपक्ष में नहीं है,
सत्ता में
है, और सत्ता में जो व्यक्ति होता है वो दूसरे तरीके से व्यवहार करता है, और उसको इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसका व्यवहार, मैंने जैसे पहले कहा, संजीदा होना चाहिए, सोचा समझा होना चाहिए, और तैश में आके कोई काम भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता।
कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
नमस्कार सर, मैं हिसार से नवीन बोल रहा हूँ।
अच्छा, हिसार से नवीन। जी हाँ
हाँ जी, जो मोदी सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया है, यही फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए सही है, क्योंकि इंडिया आज एक मैच्योर स्टेट है, वो ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकता जैसे कि पाकिस्तान करता है। दूसरा कि जो भारत कहता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, जो करजन ने एक बात कही थी कि जो ग्लोब के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो पाकिस्तान, क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसकी वजह से हम पाकिस्तान को अमेरिका जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से तो अलग नहीं कर सकता और ना चाइना कर सकता, तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अलग थलग नहीं हो सकता। लेकिन भारत बस यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक है, टेररिस्ट कंट्री है, यही बात बार बार उठाए और डेवलपमेंट करता रहे।
जी नवीन जी, हिसार से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवल जोशी हैं, इन्होंने एक फेसबुक पर टिप्पणी की है, ये कह रहे हैं कि इस बहस को हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं, पहली भारत की कश्मीर मामले की नीति और दूसरा हिस्सा मोदी की नीति, जिसका प्रतिफलन न सिर्फ पाकिस्तान के मामले में दिखाई देता है बल्कि नकारात्मक रूप से कश्मीर में उभर कर सामने आया है। इसी बहाने मोदी ने जो अपना तिलस्म रचा था वो बुरी तरह से बिखरने लगा है, और जो दूसरी नीति है वो है मोदी की नीति का।
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है हमारी कश्मीर नीति के कारण भी हो रहा है। न मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहती है, न मोदी सरकार कश्मीरियों से बातचीत करना चाहती है। एक ऐसी
नहीं, कश्मीर में तो बात करना चाहती है, सर्वदलीय बैठक हुई,
नहीं सर्वदलीय बैठक
गए वहाँ पर,
सर्वदलीय बैठक रेस्ट ऑफ इंडिया की पार्टीज की बैठक हुई, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी वो हुर्रियत के कुछ नेताओं से चुपचाप मिलते थे, समझते थे कि क्या हो रहा है।
लेकिन इस बार अब हुर्रियत के एक नेता ने दरवाजे भी नहीं खोले, सीताराम
नहीं खोले, पहले भी ऐसा हो चुका है कि उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ऐसा माहौल पैदा ही नहीं किया कि जिसमें बातचीत हो सके। जो सरकार वहाँ पे है महबूबा मुफ्ती की, आज ये हालत है कि महबूबा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकती हैं, ना उसको जम्मू के हिंदुओं का सपोर्ट है, ना उसको वैली के मुसलमानों का सपोर्ट है। लेकिन आपको इच्छा है कि आपकी सरकार बनी रहे जम्मू कश्मीर में, इसलिए आप उस सरकार को चलाए जा रहे हैं, पर वो उस सरकार की लेजिटिमेसी जो है वो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलती है। ग्राउंड कंट्रोल चला गया 13-14 साल के बच्चों के हाथ में जो पत्थर फेंकते हैं। तो आपको अपनी कश्मीर नीति को दोबारा देखना पड़ेगा कि कश्मीर में हम क्या चाहते हैं। कश्मीर को आप चाहें कि भारत के सब राज्यों की तरह वो एक वैसा ही राज्य बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। भारत का फेडरलिज्म एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, जिस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से डील करते हैं वैसे तमिलनाडु के साथ डील नहीं करते हैं, जैसे तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ डील करते हैं वैसे राजस्थान के साथ नहीं डील करते हैं। नागास के साथ हम समझौता कर रहे हैं, वो भी हमारे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का हिस्सा है। तो अगर हम ये समझ मान लें कि हमारा फेडरलिज्म जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, हम लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, कश्मीरियों की इच्छाओं को उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है, तब बातचीत आगे शुरू होगी। अगर आप पाकिस्तान से कभी बात नहीं करेंगे तो ये टेररिज्म चलता रहेगा। मैं अगर समय हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं पाकिस्तान जाता रहता था, एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल से मैंने पूछा कि जनरल साहब ये आतंकवाद की टूटी आप बंद क्यों नहीं कर देते परमानेंटली।
हाँ,
तो उन्होंने कहा लिख रहे हो, मैंने कहा नहीं बताइए समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पूरी तरह से बंद कर देंगे तो आप कहेंगे कश्मीर तो कोई मसला है ही नहीं, आप बातचीत करेंगे नहीं कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर पे आपको फोर्स करना है इसलिए हम ये टूटी बंद नहीं होती। और दूसरा, अगर मान लो हम कश्मीर पे आप बात करें पूरी तरह से बंद कर भी दें, जिन लोगों के साथ हम ऑपरेशंस पे गए हैं, जिनके साथ बड़े हुए हैं, उनके साथ अनऑफिशियल लिंक्स तो फौज के रहते ही हैं, उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान आतंकवाद और चरमपंथ का इस्तेमाल करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपको फोर्स कर सके कि आप कश्मीर पे बातचीत करें।
कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ।
हाँ श्रीकांत जी, बेंगलुरु से बोल रहे हैं आप जी, अपनी बात रखें।
ये कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जितने लोग हमारा साथ देने की बात कर रहे हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो अपनी रोटियां सीख रहे हैं। सबको इंडिया से बिजनेस चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के टाइम में जनता को झूठे वादे किए, विदेश जाके विदेशियों को झूठे वादे किए, अब भारत माता को झूठे वादे कर रहे हैं। देश को बचाओ, भारत माता को झूठे वादे कर रहे हैं।
जी श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भारत माता को झूठे वादे कर रहे हैं श्रीकांत, जो हमारे लिसनर हैं, इनका ही कहना है।
मैं नहीं मानता श्रीकांत जी, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल होकर ये सब बातें कह रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय में झूठे वादे नहीं करती या बड़ा चढ़ा के प्रॉमिस नहीं करती? तो इन्होंने भी वैसे ही किया। ये कहना कि हमको विदेशियों से बिजनेस चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, और उनको भी हमसे बिजनेस चाहिए। क्या भारत को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है? हमें मैन्युफैक्चरिंग में अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी है क्या? हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, और अगर वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश से ही होगा, वो बिना कोशिश किए हुए नहीं होगा। तो ये बहुत ही इमोशनल बात कह रहे हैं। ये अब भड़काऊ बात भी है कि भारत माता को आप दगा दे रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात।
कार्यक्रम में एक श्रोता को और शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
मेरी मोदी तक जाए तब तो मैं बात करूँ
जी। नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
नमस्कार।
नमस्कार, नाम बताएं।
मैं एक दलजीत रनावा, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
दलजीत जी, जी अपनी बात रखें आप।
हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भारत पाकिस्तान का ये बहुत पुराना मसला चल रहा है, इसे लेकर मोदी जी को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो पहले मतलब चुनाव के पहले कुछ ज्यादा उछल रहे थे। अब वो जिस सीट पे बैठे हैं, जिस कंडीशन में बैठे हैं, अब उन्हें खुद पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है।
जी दलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दलजीत कह रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि उन्हें क्या करना है, और शायद ये बात इसलिए भी सही हो क्योंकि अभी इधर हाल फिलहाल एक हफ्ते में पूरी सरकार बहुत सक्रिय हुई है।
बहुत सक्रिय हुई है इसमें कि आज सुबह तो तीनों जो आम फोर्सेस सेनाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई, उससे पहले शायद ऑपरेशंस रूम में डिफेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, उससे पहले कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की जो है उसकी मीटिंग हुई। तो ये मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हो सकता है कि इसके बाद ये डिसाइड किया गया हो कि हम कोई खुली सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। जो भी सैन्य कार्रवाई होगी वो उसमें हाई डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी होगी कि हम जो काम, जो मैसेज पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं वो भेज भी दें।
भारत बार बार कह रहा है कि उसके पास जो सबूत हैं उसी तरह पठानकोट हमले की तरह की उड़ी के सबूत उसने पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान डिनायल मोड में है, पाकिस्तान मानता नहीं कि कोई हमारे पास साक्ष्य हैं, और ये शायद उनकी पुरानी फितरत है।
लेकिन जो सिविलाइज्ड देश हैं उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। आप जाके बिल्कुल किसी के सिर पर डंडा नहीं मार सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इस बात का सबूत ये है, आप कुछ करिए। जब वो नहीं करेंगे तब आप कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि भारत जैसे बड़े मुल्क को तैश में आके कोई काम करना चाहिए।
तो अब जो भारत के पास विदेश नीति के लिहाज से अगर तरीका है, कूटनीति,
कूटनीति है बिल्कुल। आप चाहें तो डिप्लोमेटिक लिंक्स को डाउनसाइज कर सकते हैं। आपका पाकिस्तानी मिशन से आधे लोगों को आप वापस भेज सकते हैं, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं, वो भी वापस भेज आपके लोगों को भेज देंगे। आप सार्क समिट के पोस्टपोनमेंट की बात कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, और अगर भारत के साथ अफगानिस्तान बांग्लादेश भी ये बात कहते हैं तो सार्क समिट नहीं हो पाएगी। आप जो बाकी रीजनल फोरम्स हैं, जैसे है बिमस्टेक है, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल फोरम है, वहाँ उनकी समिट लेवल मीटिंग कराइए। उसमें पाकिस्तान बाहर रहेगा, वो देखेंगे रीजन प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन हम पीछे छूट रहे हैं। इसी तरह जो ब्रिक्स की मीटिंग गोवा में हो रही है,
मतलब हर उस मंच पर आप अपनी बात रखें और मजबूती के साथ रखें।
नहीं नहीं, अपनी बात ही ना रखें, आप रीजनल कोऑपरेशन आगे बढ़ाएं पाकिस्तान के बिना।
हाँ
तो पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तानियों को ये बात बुरी लगती है कि एक ज़माने में उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भारत से अच्छे थे, लेकिन अब वो कहाँ पीछे छूट गए और भारत कहाँ आगे बढ़ गया है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे उनको आइसोलेट,
यानी कि बहुत सारे तरीके भारत इस्तेमाल कर सकता है। भारत भूषण जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। तमाम उन श्रोताओं को शुक्रिया। घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।